श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 17। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अर्हयत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम् तेहो रात्रा विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो आपने सुना था, बहुत शुक्रात की बात है कि भगवान भगवद गीता में 5 तत्वों का निरूपण कर रहे हैं और उसमें से एक काल है। तो आज यहाँ पे भगवान काल के बारे में बता रहे हैं। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सत्ययुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,27,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,16,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 7,08,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1,000 चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के इतने सारे जीरो वाले वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान श्रील प्रभुपाद ने दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी सतयुग चल रहा है और ये सत्ययुग देवता द्वापर कली जो हैं वो बस कुछ 1000 साल के होते हैं। तो इन बातों का कोई आधार नहीं है, लोग अपने मन से कपोल कल्पना करते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि कोई कहे कि अब कलयुग शुरू हो नहीं शुरू खत्म हो गया है, अब सत्ययुग चालू हो गया है, तो काहे का सत्ययुग चालू हो गया है? कितने धर्म कितने गलत कार्य होते ही रहते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ जरा ये देखें कि हमारा जीवन और जिन जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन उत्तरदायित्वों को हमने इतना बड़ा बना रखा है कि भगवान के भजन को नेगलेक्ट करते हैं, तो ज़रा ये देखिए कि हमारा जीवन कितना क्षणिक है। अगर आप परसेंटेज निकालने बैठे हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन उसका भी कितना छोटा समय है। ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर में जितने समय के लिए हम हैं, और फिर अगर शाश्वतता से कंपेयर किया जाए तब तो बड़ा मुश्किल है समझना। शाश्वत समय के अनुसार ब्रह्मा जी का जीवन भी एक चुटकी के समान है, जो हमने सुना कई कई करोड़ों साल का जीवन। तो बताइए हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन की उपलब्धियां, जो भौतिक उपलब्धियां हैं, उनका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। और उसका गाना गा गा करके हमारा ये कर्तव्य है वो कर्तव्य करके अगर हम भगवान के भजन को तिरस्कार कर दें तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ी मूर्खता होगी हमारे बिहाफ के ऊपर, हमारे तरफ बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो ऐसा मूर्खता नहीं करना चाहिए। ये जीवन तो एक स्वप्न की बात भांति है, तो इस स्वप्न को अच्छी तरह से देखें या बुरी तरह से देखें ये महत्व नहीं है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस स्वप्न से जगने का प्रयास करें, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने इस गणना को बताया है। तो गणना पे थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे। चारों युग जो हैं वो कुल मिला के 43 लाख साल के होते हैं, और ऐसे चारों युग के 1000 साइकिल होती है जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और उसके बाद वो भगवान के धाम चले जाते हैं, पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। हाँ, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करें तो एक ही जन्म में भगवान के धाम जा सकते हैं, हमें ब्रह्मा जी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझ में आना चाहिए कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, अपितु वो बूढ़े तो नहीं होते हैं लेकिन, और बीमारी भी नहीं होती है, लेकिन उनको मरना जरूर पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है। खैर, उनका शरीर त्यागना भी वो हमारी तरह नहीं होता, हम ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी भगवान जैसे बोल रहे हैं आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन। अच्छा, अब उसमें एक बात भी है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा बना है पुण्य कर्मों की वजह से और भगवान का भक्त नहीं है तो फिर सृष्टि होती है तो फिर उसको ब्रह्मा के रूप में आना पड़ता है। तो शुद्ध भक्त होता है तभी भगवान के धाम जाना जाना जा पाता है। तो देखिए, शुद्ध भक्त होना हमको अभी बड़े मुश्किल लगे लेकिन वही हमारी वस्तुतः स्थिति है। ये हमारे ये जो वस्तुतः स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति जीवात्मा की यही है कि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे टारगेट को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी होगा ही नहीं, नहीं, वही हमारी मौलिक स्थिति है, खाली वापस आने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण के प्रेमी के रूप में। तो इसलिए हम लोग को बड़े आशा के संग और भगवान की कृपा की अभिलाषा करते हुए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। और कितना भी समय लगे, अगर एक जन्म में नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं, 2 जन्म 3 जन्म 10 जन्म 20 जन्म, लेकिन अब ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान के धाम पहुंच करके ही हम दम लेंगे और भक्ति करते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रे वा व्यक्त संयके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त में रहते हैं ब्रह्मा, यानी कि प्रकट नहीं होते। जीवात्मा रहती हैं हमेशा, वो शाश्वत रहती हैं, लेकिन उनको शरीर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए बोला जा रहा है वो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। और जब व्यक्त होते हैं, व्यक्त का अर्थ होता है कि पिछले सृष्टि के पहले जो प्रलय हुई थी तो उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनके कर्म थे, उनके अनुसार उनको ब्रह्मा जी के द्वारा उनको शरीर प्रदान किया जाता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट श्लोक भी देखेंगे, 19। भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः प्रार्था प्रभवत्याहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर। क्यों बहुत सुंदर? इसलिए बात सुंदर है क्योंकि इतने बड़े बड़े हम लोग उपलब्धियों का जो शोषा रचते हैं या आडंबर करते हैं, कह सकते हैं अभिमान करते हैं, वो सब कुछ असहायवत सब खत्म हो जाएगा प्रलय के साथ। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो हम तो उपलब्धियों को छोड़ देंगे ही, लेकिन ये जगत भी पूरी तरह से अव्यक्त हो जाएगा एक समय में। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। अल्प ज्ञानी क्योंकि व्यक्ति अपने शाश्वत स्वरूप को, शाश्वतता को समझ नहीं पा रहा, इसलिए स्वर्ग आदि जाने की इच्छा करता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बारिश के समय रात में कीड़े उत्पन्न होते हैं, और जैसे सुबह होता है वो मर जाते हैं और झाड़ू से उनको एक किनारे कर दिया जाता है। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब दिन का समय होता है ब्रह्मा जी का, तो हम लोग को शरीर प्राप्त होता है। जैसे प्रलय खत्म होती है ब्रह्मा जी के एक दिन की, फिर हम लोग गर्भोदकाशय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं, रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि की बात होती है। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, तो उन सबका संहार हो जाता है और वह करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। यानी कि यहाँ पे अब ब्रह्मा जी के पूरे परमायु की बात है। जब वो समाप्त हो जाती है, तो महाविष्णु के शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, देव शरीर में। तो आप ये सोचिए कि हम लोग कितने सृष्टियों से जगत में हैं, हम सोच नहीं सकते। और उसके बाद क्या हमारा सौभाग्य था, हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हमें बिल्कुल दांत से पकड़ लेना चाहिए। अगर हमारे भजन में कोई भी बाधा आ रही है, तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। बाधा आ रही से मतलब है कोई आसक्ति है घर परिवार की, नौकरी की, कुछ जो भी, उसे त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्योंकि ये मौका कब मिलेगा दोबारा, हमें पता नहीं। वस्तुतः मानव जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ करना ही बहुत बड़ा नुकसान है। स हानि स महत् छिद्रम, ये बोला जाता है शास्त्र में, आता है कि बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा छिद्र है, अगर हम एक क्षण के लिए भी भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। ये मानव जीवन का परम लाभ है। और हम लोग सब लोगों को, भले ही हम उस स्तर पर नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक भगवान विष्णु का स्मरण, उनकी सेवा कर सकें। ये परम लाभ है। इस प्रकार अन्य कल्प में ब्रह्मा का जन्म पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। अर्थात वो दुनियादारी में फंसते नहीं। अगर कोई गृहस्थ के रूप में भी रहते हैं, तो उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मिले, ना कि जीवन की आवश्यकताओं को, अनावश्यक आवश्यकताओं को इकट्ठा करने में बिताने में बिते। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात अनन्य भाव से कृष्ण का ही भजन करते हैं, अन्य देवी देवताओं के चक्कर में ना फंस करके और भगवान के धाम की प्राप्ति करके सदा के लिए भगवान के संग सुखी जीवन बिता देते हैं। जैसे हिंदी की पिक्चरों में बाद में एंड में आता था, बहुत सारे कष्ट हुए, परेशानी हुई, एंड देन दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर। अब वो लोग तो सत्य रूप से हुए कि नहीं हुए, कोई गारंटी कि नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के धाम पहुंच जाएं, चाहे कितना सुख दुख इस जगत में हमें सहना पड़े, लेकिन अगर भगवान के धाम पहुंच गए, तो बस फिर सही मायने में कहेंगे कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हरे कृष्णा।